ओम शांति, ओम शांति। आज के इस रात्रि क्लास में हम सबके बीच आदरणीय सतीश भाई जी उपस्थित हैं। आप सभी को मालूम है कि सतीश भाई जी कौन है, सब जानते हैं कि हमारे बीच आज ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी भाई जी बैठे हैं। आप गीतकार, संगीतकार, बहुत अच्छे वक्ता, मंच संचालक और भी अन्य बहुत सारे प्रतिभाओं से भरपूर मल्टी टैलेंटेड हमारे भाई जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम सभी किंग्सवे कैंप और विकासपुरी सेंटर के भाई बहने करतल ध्वनि से भाई जी का स्वागत करेंगे। और आप मधुबन, जहाँ पर हम सभी इस तपस्या भूमि में बैठकर 3 दिन से तपस्या कर रहे हैं, आप बाबा के बाबा भोलानाथ, तो बाबा भोलानाथ के भंडारे में आप ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा करते हैं। तो हम सभी भी रोज क्या खाते हैं, ब्रह्मा भोजन। तो भाई जी की इस सेवा देखिए कितना उनका पुण्य का खाता जमा हो रहा है। तो ऐसे पुण्य आत्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। और भाई जी जो भी यहाँ पर विदेश से भी या अन्य स्टेट से भी जो भाई बहने आते हैं, जिनको हिंदी सीखने की इच्छा होती है, जिनको हिंदी नहीं आती है, तो भाई जी हिंदी भी सिखाते हैं। और थोड़ा सा मैं भाई जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आपका जन्म 1960 में सुल्तानपुर यूपी में हुआ और आपने 12वीं पास करते ही आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना संपूर्ण जीवन बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। और ये भी एक विशेष बात है कि आपका पूरा परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान में है। पूरे परिवार में आपके अलावा 3 लौकिक बहनें और 4 भाई सभी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और आपको मधुबन पावन भूमि यहाँ पर रहते हुए 40 साल हो गए हैं, समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और आप आर्ट एंड कल्चर विंग, आप सभी जानते हैं ना आर्ट एंड कल्चर विंग, जितने 21 विंग्स है हमारे आरईआरएफ के अंडर, तो आर्ट एंड कल्चर विंग में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें आपका मुख्य रोल रहता है। तो आप अभी तक 5,000 से अधिक बाबा के गीतों के रचनाकार हैं। और गीत जो हम सुनते हैं, हम सबका मन रूपी तार बाबा से सहज जुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा योग लगता है। और उन गीतों को सुनकर हमारा योग लगता है, तो इससे हमारे दिल से क्या निकलता है, दुआएं। तो भाई जी कौन है, दुआओं से भरपूर आत्मा है। और जितने भी भाई जी ने रचना की है गीतों की, तो इसमें बॉलीवुड के बहुत फेमस सिंगर्स ने गाए हैं और भाई जी इसके रचनाकार हैं। तो आज के क्लास में भी हम थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। ये क्लास ऐसा रहे कि डिवाइन सॉन्ग्स प्लस आपके अनुभव युक्त क्लास हम सभी सुनना चाहेंगे आदरणीय सतीश भाई जी से। और भाई जी का वेलकम करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ त्रिभुवन भाई और कुलदीप भाई, आप आएंगे तो भाई जी को माला पहनाकर और चुन्नी पहनाकर वेलकम करें। आप सभी तालियों द्वारा वेलकम करें।
लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला, आत्म शुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई, व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई, विस्मृत होने लगे पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान, इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला, लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला। मन की गति पर हुआ नियंत्रण, मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन, शिव से कर तादात्म स्वयं का, करते निज संशोधन, चिंतन लगा चमकने चित्त की चंचलता कुम्हलाई, निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई, वाह तपस्या तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे, भाव भय बंध मिटेंगे सारे, और जिसमें सब अस्थि गलेंगे, भाव भय बंध मिटेंगे, मैपन के सब अस्थि गलेंगे, मैपन के सब अस्थि गलेंगे, और जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला, इस तप के बल से ही स्वर्णिम युग है आने वाला, और लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला, होने लगा उजाला। ये इसलिए सुनाया आपको कि आप तीन दिन से, हमने तो गीत में कहा कि चार दिन में ही 14 वर्ष की तपस्या करनी, तो आपने 14 वर्ष की तपस्या कर ली होगी, किया सब कोई हो गया ना, अभी बाकी है कुछ, ठीक है। चलिए आज अनुभव की लेन देन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज की मुरली का एक सिंहावलोकन हो जाए। जब भी बात करता हूं तो मैं मुरली को प्राथमिकता देता हूं, जो बाबा कहते हैं पहले वो सुना जाए। तो बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी शांति धाम और सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। पहली बार सुना था, सुना बहुत बार मुरली, लेकिन आज बाबा ने शांति धाम सुख धाम से पहले ईश्वरीय धाम बताया, ईश्वरीय गोद तो थी, आज धाम बताया। और तुम अभी सत के संग में हो और क्या कर रहे हो, पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न है कि बाप तुम बच्चों को हैं? तुम बच्चे बाप से भी ऊंचे से ऊंचे हो, कैसे? बाबा कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं और तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं और साथ साथ ब्रह्मांड का भी मालिक बना देता हूं। तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ऊंच हो, तभी तो तुमको मैं नमस्ते करता हूं, और मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम मालिकों को मालिकम सलाम सलाम करता हूं, और तुम बच्चे ऐसा बाप ऐसे बनाने वाले बाप को भी तुम बच्चे सलाम करते हो, तुम बच्चे सलाम करते हो। पर धारणा सार बाबा कहते हैं कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान आके हमें मनुष्य देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो क्या होता है तुम्हें इसी नशे और खुशी में रहना है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें पुरुषार्थ करना है अच्छी तरह से। दूसरा, ये सबके वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ी है, अब वापस घर जाना है, तो क्या करना है? एक बाप की याद से सारे पापों को भस्म करना। फिर वरदान में क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं वरदान में? करंट की बात थी है? जी किसी को याद है? हाँ, क्या बताया बाबा ने? बहुत दूर बैठे हैं आप में से, बताया कोई? हाँ, माला माल बनने की बात कही है। साहब, जो अखुट खजाने हैं उन अखुट खजानों के माला माल बन जाए। स्लोगन था कि बाप से, सर्वशक्तिमान से कनेक्शन रखो तो सर्वशक्तियों की करंट मिलती रहेगी। रूहानी पर्सनालिटी में, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी में बाबा कहते हैं तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है? पवित्रता ही पर्सनालिटी है। ये डिग्री, ये जितनी हमारी जो पवित्रता की पर्सनालिटी है जितनी आगे बढ़ती है उतना ही हमारे अंदर रॉयल्टी आने लगती है, पर्सनालिटी हमारी बढ़ जाती है। पवित्रता से सुख शांति आती है, और अपवित्रता का थोड़ा भी अंश रहता है तो क्या आता है? दुख अशांति आती है। इसलिए बाबा के इन महावाक्यों को सुनकर हमें उसको समराइज कर लेना चाहिए, कुछ बुद्धि में रख लेना चाहिए जो सारे दिन पर उस पे वर्क है। तो हमारे मन में तो आपको बहुत कुछ सुनाने के लिए है। मेरा विचार ये है कि भट्टी का जो सार है वो सार है कि हम भट्टी कर रहे थे ताकि हमारी स्थिति वो शक्तिशाली बने। आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो घटनाएं हैं, जैसा समय आने वाला है, उस आने वाले समय के लिए हम तैयार हो जाएं। अभी आपसे पूछेंगे कि भाई अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ, तो आप कहेंगे भट्टी बहुत अच्छी हुई। पहली बात तो ये, अच्छी हुई तो क्या अच्छी हुई? बड़े अच्छे अच्छे क्लासेस हुए, क्लासेस में बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिली, पुरुषार्थ की विधि मिली, अच्छी अच्छी युक्तियां मिली। आप ये भी कह सकते हैं शक्ति भर गई, उमंग उत्साह भर गया, और आइसक्रीम वगैरह खा कर थोड़ा मजबूत भी हो गए, है ना? लेकिन भट्टी का लक्ष्य क्या है, क्या था और क्या किया? इसलिए मैंने प्रारंभ में आपको तपस्या की अग्नि लगी तो क्या होना चाहिए वो मैंने आपको सुनाया। अब विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। अब तो भट्टी हुई, अब आपकी आगे जो यात्रा चलेगी पुरुषार्थ की, अब माया भी समझती। बाबा भी कहते हैं ना कि जब तैयार होंगे, इधर योद्धा तैयार होंगे, तो माया कहती है वो भी ठीक है आ जाओ, मैं भी तैयारी करती हूँ। रुस्तम से रुस्तम बन करके माया प्रस्तुत होती। तो आने वाले समय के लिए हम सब जानते हैं कि पेपर्स कौन से होंगे, पेपर हॉल कौन सा है ये भी जानते हैं, पेपर का ड्यूरेशन क्या है, टाइम क्या है वो भी जानते हैं, और पास होंगे तो किस बात में होंगे, एक सेकंड के नष्टो मोहा के पेपर में पास होना है, ये सभी जानते हैं। अब होंगे कैसे, मैं अपने कुछ अनुभव के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी सात बात नोट कर ले। एक पहली बात है कि इस विशाल समंदर को तय करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी नाव है। वो नाव पुरानी भी है, थोड़ा कहीं बहुत थोड़ा बहुत छिद्र भी है, पतवार भी थोड़ी टूटी है, छूटी है हाथ से, रात अंधियारी है, फिसलन भरी है, पहुंचना है, लेकिन इतना विश्वास है कि हमारा जो नाव का जो खिवैया है वो स्वयं भगवान है। जितना जितना हम बाबा के स्नेही बन जाएं, पहली बात स्नेही मूर्त बन जाए, एक मेव मार्ग अगर पुरुषार्थ को सरल करना है और सहजता से मंजिल पर पहुंचना है तो सबसे पहली बात है स्नेही मूर्त बन जाए, स्नेही बन जाए। केवल बाबा के नहीं, बाबा के केवल एक स्नेह तो है, लेकिन बाबा के स्नेह को पाने के लिए सबका स्नेही बनना है। सबका स्नेही बनने से पहले स्वयं का स्नेही बनना है। स्वयं के स्नेही का मतलब है स्वमान में रहना। जितना जितना हम स्वमानधारी बनते जाएंगे उतना उतना ही शक्तिशाली बन जाएंगे। स्वमान एक बाबा की एक समझो एक रणनीति कहें, कूटनीति कहें, राजनीति कहें या नीति कहें, कि बाबा ने आते ही ये देखा कि बच्चे तो एकदम मरे हुए, इनमें तो कोई जान ही नहीं, तो उसने स्वमान भर दिया, मीठे मीठे कहना शुरू किया और हमको इतना ढेर सारी चीजें दे दी। आज देखो स्वमान कितना बता, बच्चे बाबा से ऊंचे, मैं तो नहीं बनता हूं विश्व का मालिक और तुमको बना देता हूं, मैं ब्रह्मांड का मालिक भी बना देता हूं और मालिकों का मालिकम सलाम करता हूं। अब इतनी बड़ी, इतना अच्छा डोज, इतना शक्तिशाली स्वमान कहां मिलेगा? सोचिए, केवल बाबा से और बाबा की मुरली से ही मिल सकता है। तो स्वमान हमारे दिनचर्या का अभिन्न अंग हो जाना चाहिए। तो शक्तिशाली बनने के लिए पहली बात आप स्नेही बने और स्नेही बनने के लिए स्वमान को याद करें। जितना जितना आप स्वमान में रहेंगे उतना उतना अभिमान खत्म होगा और जितना जितना स्वमान में रहेंगे उतना बाप के द्वारा सम्मान और प्यार का अनुभव होगा और जितना जितना बाप के प्यार का सम्मान का अनुभव होगा उतना हम उसके स्नेह में समा जाएंगे। रोज सवेरे आए, सवेरे आंख खुले तो उठते ही सबसे पहले अपने स्वमान की स्मृति में हो जाए कि मैं वतन में जागा हूं, रात को सोया, बाबा ने उठाया, बहुत प्यार किया, बड़ा सम्मान किया, पुचकार दिया, ताज पहना दिया, तिलक लगा दिया, गोद में बिठा दिया, ताज तक तिलक तीनों दे दिया और मुझे अपना मालिक बना करके अपनी गोद में बिठा के तैयार करके पीठ थपथपा करके फिर हमको कहता है बाबा कि आज मास्टर भगवान बन के तुम जाओ, आज धरती पर मैं नहीं जाता हूं और सारा मेरा काम तुमको करना है। तो जैसे हमारे स्कूलों में पहले होता था ना कि एक दिन के लिए अगर प्रधानमंत्री बन जाऊं तो क्या करेंगे, हैं? ऐसे एक दिन के लिए हमको एक्स्ट्रा मिली है ये मोहलत, मैं एक दिन के लिए मैं आया हूं, वतन से आया हूं, मेरा अवतार हुआ है, मैं खुदा दोस्त हूं, तो क्या करें? उसके पहले आपको बताता हूं 7 पॉइंट और याद कर लें हमारी कि रोज दिनचर्या में इस चीज को लेना आपको है। एक तो सवेरे आंख खुले तो वतन में आपकी आंख खुलनी चाहिए इस निश्चय के साथ, और ये तब होगा जब रात को हम सोने जाएं तो इस निश्चय संकल्प के साथ सोएं कि हम बाबा की गोद में वतन में जा रहे हैं और वतन में गया और वतन में बाबा की गोद में सो गए। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अकेले कभी भी न सो, और बाबा ये भी कहते हैं कि जब बच्चे रात को सो तो अपने सारे दिन भर के जितने भी बातें जो दिनचर्या है वो सब बाबा को सौंप दो। सारी चिंताएं, सारी बोझ, दिन भर में क्या क्या हुआ है, यहाँ तो सब अच्छा ही हुआ है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वहां जो होता है वो हम जानते हैं क्या क्या होता है, उन सब बोझ को बाप को सौंप दें, हल्के हो जाए और सौंप के बाबा की गोद में सो जाए। तो सवेरे आंख खुले तो इस संकल्प के साथ कि मैं चारपाई पर नहीं सोया था, बाबा की गोद में सोया था, ये अपने विचारों का यहां से ही ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, यहां ही ट्रांसफर कर, यहीं पर चेंज करना शुरू करें। दूसरा संकल्प आना चाहिए कि सामने देखे, आंख खुले तो लक्ष्य हो कि मुझे कोई देहधारी को नहीं देखना है, किसी व्यक्ति को नहीं देखना है, सबको देख लिया, देहधारियों को देखते देखते पूरा कल्प बीत गया, अब तो मुझे मेरे बाबा को ही देखना है, उसी से दिन की दिनचर्या शुरू हो, उसी से दिन शुरू हो, उसी से दिन खत्म हो, यही तो लगन होती है, सबकी लगन होती है। तो जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर, और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत। सवेरे उठते ही जी, सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते 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 नमस्ते। गाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप गूगल पे ढूंढ लेंगे तो ये सब मिल जाएंगे, सारे गाने, हजारों गाने, ये तो कहने में आता है 5000 गाने, पता नहीं कितने हो गए अनगिनत, रोज ही तीन तीन। अभी मैं नीचे शांतिवन में संतों का सम्मेलन था, उसका स्वागत करके आ रहा हूं, और फिर कल सवेरे उनका इनॉग्रल होगा, वो है, बच्चे आए हैं, बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो रोज आना, इतने दो दो तीन तीन गाने बनते हैं, इनकी संख्या अगर देखा जाए तो 6000 तो गाने हमारे पास लिखत हुआ है, रखे 10000 से भी ज्यादा होंगे, 10000 से भी ज्यादा होंगे, और ये बायोडाटा बहुत पुराना हो गया है, हमारा बायोडाटा बहुत सिंपल सा होता है, मैं तो कहता हूं इतना बहनों को सोचना पड़ता है, क्या बताऊं भाई जी के लिए, मैं तो उनको कहता हूं बस शॉर्ट में बताओ, भोजन और भजन, खाना और गाना, ताली और थाली, क्लास और ग्लास, और जब मुझे देना होता है तो गीत ही परिचय मेरा, गीत ही पहचान है, और गीत ही अनुभव मेरा, गीत प्रभु वरदान है। एक ही गीत में क्या भरा, भी जो बज रहा था मन मंदिर के मूरत, आज से 30 साल पहले लिखा है गाना, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, चरणों में जगह, क्या गीत है, एक ही गीत में जीवन भरा है। कौन कहता है कि मेरा योग नहीं लगता है, शायद वो गाना नहीं सुनता होगा, बाबा के गाने ऐसे सुनिए, सारे बाबा के प्यार में समा देने वाले, एक से एक बढ़कर। मैं तो कहता हूं कुछ भी ना आए, आप बाबा 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 करो तो भी पार हो जाए बेड़ा, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा करते रहिए, इसी में सब कुछ भर जाएगा, लेकिन मुख से निकले तो सही है ना। तो पहला अनुभव ये होना चाहिए कि बाबा को देखे और सामने अपने यहां जहां सोते हूं वहां बाबा की कास्केट सामने लगा दें, कि मेरी दृष्टि पड़े पड़े तो बाबा पर पड़े। और ये मन का गणित समझना बहुत जरूरी कि सवेरे उठते ही अगर 10 मिनट तक आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उनको संकल्पों को पकड़ के चलाने लगे, तब वो सारे दिन संकल्प आपके अनुसार चलेंगे। जैसे एक अस्तबल है घुड़साल, जहां घोड़े पाले जाते हैं, घोड़ा वहां भूखा प्यासा दरवाजे के पास खड़ा हुआ है रात भर का सोने के बाद, और जैसे आपने दरवाजा खोला तैसे घोड़ा निकला, और भूखा प्यासा तो था ही, आगे आगे भाग रहा है, आप पीछे भागो, घोड़े के पीछे कहां तक भागोगे, घोड़ा आगे आगे और आप पीछे पीछे। लेकिन अगर खोलते ही आपने उसकी नकेल पकड़ ली और थोड़ा भी प्यार कर दिया, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा हाथ पांव सहला दिया, पुचकार दिया, तो इतना ही चाहिए उसको और कुछ नहीं। उसको लगे कि दुश्मन नहीं है हमारे, भूखे हमको रख दिए हैं, ये हमारा ख्याल करने वाले हमारे मालिक हैं। तो सारा दिन घोड़ा आपके पीछे 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 चलता रहे, यही मन का गणित है। सवेरे उठते ही अपने सब संकल्पों को बाबा से बांध ले, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पर मेरे विजय का, मस्तक पर मेरे विजय। उठते ही अपने सारी सौ बाबा को दे, ऐसे बैठ जाए एकदम, जरा उस स्वरूप में बैठ जाए। जब उठे सवेरे तो उठते ही एक आसन में विशेष बैठ जाए, ये जिस आसन बैठा हूं ये सर्वोत्तम आसन है, मैंने भी बैठ सकती है, हमारी दादियां बैठती थी इस आसन में, सब नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बैठने की कोशिश करें। थोड़ा दर्द रहेगा, कम से कम जागे तो रहेंगे दर्द के बहाने, हैं? और जब एक पांव में दर्द हो तो दूसरा बदली कर ले, लेकिन ये आसन आपको निद्रा मुक्त, आलस से मुक्त, अलबेलापन से मुक्त रखेगा। पांव पे पांव रखने के जो बाबा बैठते हैं, है ना, ये पांव पे पांव रखे ऐसे बैठे, ये बहुत अच्छा है। जिन किसी को भी, एक शॉर्ट में बताता हूं, ये हम सबकी मोस्टली प्रॉब्लम है। हम ब्राह्मणों को देखते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अनुभव में यही आता है, जब सवेरे यहां बैठते हैं, आप सब तो बहुत अच्छे बैठे, कोई 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 थोड़ा आलस लग रहा था, लेकिन आपको देखा मैंने तीनों दिन भट्टी में देखा, आप बहुत अच्छे बैठे रहे। एक बार अपने लिए अभिनंदन कर दिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी एक जगह मैं परसों नरसों ही आया, वहां गया तो बहनों ने बताया, भाई ये सारे भाई जितने भी बहने बैठे हैं मुरली सुनाते सब सो जाते हैं। तो मैं आश्चर्य में हो गया कि मैं तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाला था, अब इनकी तो प्राइमरी बात ही बदली हो गई हमारी। ब्राह्मणों का यह प्रॉब्लम है कि लाल लाइट हुई, अमृत बेला हुआ, योग में बैठे और अंतर ध्यान, ऊपर तो नहीं जाते, दूसरे लोक में जाते, वो प्रॉब्लम बड़ी गजब की है। वो तो चलो ठीक भी है, जो बैठे योग करने वाले, प्रॉब्लम तब हो जाता है जब सामने बैठने वाले भी उसी रंग में रंग जाए। बुजुर्ग कोई बैठे हैं उनकी बात अलग है, मैं तो देखा हमारे यज्ञ में दादी जानकी लास्ट तक भी वो योग कराती रही। मैं अपने ब्रजमोहन भाई जी को देखा पांडव भवन में 81 में या उसके पहले 78 में आना शुरू हुआ, तब से देखा तो बैठ के बीच में योग करा रहे हैं, और मैं भी बैठ के योग कराता हूं। ये मेरी उसमें बायोडाटा लिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे भाई बहने विदेशी अक्सर कहते हैं, अमृत बेला ब्रदर बोलते हैं, कि मैं अगर यहां पर हूं तो जरूर आपको अमृत बेला मिलूंगा। और 45 साल हो गए मधुबन में रहते हुए, 45 वर्ष में एक अमृत बेला भी मिस नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह बोल, मैं अपने लिए इसलिए ताली बजवाया कि हौसला अफजाई हमारा तो हो जाएगा, लेकिन आपको भी हौसला मिलेगा। ये बात कम आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है, 45 वर्ष और एक वर्ष में इतने दिन और अमृत बेला मिस ना हो। एक बार हिस्ट्री हॉल में, तब शायद ओम शांति भवन भी नहीं बना था, याद नहीं है पूरा, तो दादी जी 18 जनवरी के दिन थे, वहां बैठे थे, दादी जानकी ने कहा, कि जो कभी अमृत वेला मिस नहीं करते उनको दादी इनाम देगी। तो तीन लोगों ने हाथ उठाया था। एक दादा विश्वरतन थे। आप में से कौन दादा विश्वरतन को देखे? दादा विश्वरतन को हा? अरे इतना बड़ा हॉल, दादा विश्वरतन को देखे नहीं? वो भाई हमारे हैं रमेश भाई तो है ही, और भी कोई? कोई नहीं। अच्छा तो हाँ, ये तो बहने हमारी हैं, तो पुरानी लोग। तो दादा विश्वरतन से बड़ी प्रेरणा मिलती थी। दादा ऐसे बैठते थे, ऐसे योग करते थे। एक दिन देखा मैंने, सिरोही गई दीदी मनमोहिनी, दीदी मनमोहिनी गई सिरोही और मैं सोने के लिए जा रहा था। रात को 11 बजे दीदी आई और सवेरे मैं 4 बजे योग में बैठा हिस्ट्री हॉल में, तो देखता हूँ दीदी बैठ गई और दादा बैठे। दीदी बैठी है और दादा बैठे, बीच में कोई और बड़ी बहनें बैठी होंगी, दादियां बैठी। मैं वो देख करके हैरान हो गया कि दीदी इतनी उम्र की होते हुए और इतनी दूर से आई, इतनी देर से आई और सवेरे अमृत वेला बैठी, ये पार्टिकुलर। तो उनसे सीखा। तो दादा विश्वरतन को मैंने देखा, उनका अमृत वेला कभी मिस नहीं होता था। दूसरे एक भाई थे, उनका नाम अभी थे कह रहा हूं क्योंकि अभी 3-4 कुछ दिन ही हुए, रामलोचन भाई शांतिवन में, उन्होंने शरीर छोड़ा, उनका कभी अमृत वेला मिस नहीं। और जब बैठते थे अमृत वेला तो क्या मगन अवस्था, बड़ी गजब। उनसे बहुत कुछ सीखा, बड़ी गजब की। और तीसरा मैं था, तब तो मधुबन में आए, कुछ ही दिन हुआ था, तो मैंने कहा कि ये तो मैंने विलिंगली मधुबन निवासी बने, दो संकल्प ले लिया, आज से मुझे कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है, यानी मधुबन के जो दिनचर्या है वो मुझे पूरा फॉलो करना है। अगर मैं मधुबन में यहां पर हूं तो रोज ही बाबा से गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने बाबा के कमरे में जाना जरूर है, ये पक्का नियम है बराबर। यहां तक कि कभी कभी आलस से होता है, कमरे में पहुंच गया हूं तो भी नियम निभाने के लिए ड्रेस पहना, फिर से पहना, आके बाबा से गुड नाइट करके ही जाना है। रात को 11 बज गए 11:30 तो भी जाता हूं, दरवाजा बंद हो गया दरवाजे के बाहर से, लेकिन जाना जरूर। नियम निभाओ, नियम बड़े बलवान है। जिन्होंने अपने लिए नियम बना लिए, जीवन के लिए सिद्धांत बना लिए, जिन्होंने मोटो बनाने प्रिंसिपल बना लिए, वो जीवन में कभी कमजोर नहीं रहते। मैंने 5 बातों का अपने जीवन के सिद्धांत बना लिए, उनमें से एक तो ये सिद्धांत जो है वो बताऊंगा, और नहीं बताऊंगा क्योंकि बताने के बाद उसका जो नशा है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। आपको स्वयं बनाना है, अपने लिए बना लीजिए अभी भी। जो हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जीवन पूरा हो गया है, लेकिन अब से भी जो पुरुषोत्तम संगम युग में जो दिन बचे हैं हमारे, उन दिनों के लिए भी बना लें कि अब ब्राह्मण जीवन में मुझे कुछ ऐसे प्रिंसिपल बना लें कि लोग उस बात से याद करें। जैसे जगदीश भाई को याद क्यों करते हैं? उनकी एक खूबी को डंके की चोट पे कहा जाता है कि भाई जी समय के बड़े पाबंद थे, टाइम कितने पंक्चुअल थे, और एक के साधने से सब साथ सज जाता है। मैंने गीतों में लिखा है, जगदीश भाई के गीतों में लिखा है, अभी कहानी शुरू ही की थी, अभी अभी क्यों कर दी अंत, मेरे भाई सबको सुनाते, खुद कर ली क्यों आंखें बंद, खुद कर ली क्यों आंखें बंद। आप तो खूबियों के खूबा थे, वक्त के थे बड़े पाबंद, मेरे भाई सबको सुनाते, खुद आंखें क्यों कर ली बंद। तो ये है समय के पाबंद। तो ऐसी कोई अपनी विशेष बना ले, मोटोस बना ले कि आपको याद किया जाएगा। उन भाई को देखता था तो देखा हमेशा मुस्कुराते हुए मिले। अपना एक जो आपकी खूबी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको पक्का बना ले, वो आपको आगे बहुत बढ़ाता रहेगा, ठीक है। अच्छा लगेगा ये करेंगे, ठीक करेंगे, हाँ ये जरूर करें। तो पहली बात मैं जो करा था वो मधुबन में आए तो ठान लिया कि जो मधुबन की दिनचर्या है वही मेरी दिनचर्या होनी चाहिए। तो अमृत वेला भी हो गया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो गया, रात का भी हो गया, दिन का भी हो गया, मुरली में भी पंक्चुअल होना, सब में मैंने अपने आप को बहुत पार्टिकुलर किया। दूसरा अब मैं मधुबन निवासी हूं तो कोई सेवा में मुझे ना नहीं कहना है। इन खूबियों ने, दोनों खूबियों ने इतनी चीजें, इतनी खूबियां, इतनी खूबी, इतनी अच्छाइयां निवाजिश की हैं, इतनी प्रदान किए हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं ईश्वरीय परिवार के बहुत ही करीब हूं। सब बहुत प्यार करते हैं, शायद इसलिए मेरा भी बहुत प्यार उमड़ता है। मैं अपने एक एक भाई बहन को देखता हूं तो मन करता है कि मैं इनके कैसे काम में आऊं। थोड़ा किसी को मुरझाया देखता हूं तो मन करता है मैं जाऊं पहुंचूं। अगर भाई है तो उसको कंधा वंधा हिलाऊं और पूछूं, भाई क्या मुसीबत आई, क्यों आपकी सूरत है मुरझाई, क्या किस बात की है कठिनाई है? उनको हिलाऊं और डुलाऊं, थोड़ा बताऊं, थोड़ा खुश करूं, पूछूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं भगवान के बच्चे और हमारा ये ईश्वरीय परिवार और ईश्वरीय परिवार का एक एक भाई बहन कभी भी उदास हो, क्योंकि हम सबके आंसू पोंछने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, सबको खुशी देने वाले। अगर खुशी देने वाले स्वयं ही नाराज रहेंगे, अगर खुश रहने वाले स्वयं ही रो रहे हैं, तो रोते को हंसाएगा कौन? कौन रोते को हंसाएगा? इसलिए इन दोनों विशेषताओं ने बहुत अच्छी विशेषता दी, आप भी इसके लिए बनाए। तो पहली बात मेरी, उठते ही बाबा को देखें, बाबा के प्यार में मगन हो जाएं और बाबा के प्यार से अपने आप को इतना भर लें कि इंसानों के प्यार की आवश्यकता न रहे, क्योंकि हमारा मन बड़ा कमजोर है। थोड़ा भी कहीं कोई स्नेह देता है, थोड़ा भी कहता है कि तू मेरी बन जा, मैं तुझे चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, तो मेरा मन लटक जाता है उसके पीछे और मन बराबर ढूंढता रहता है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो प्यार, बाबा के प्यार से इतने आपको भर लें अपने आप को कि किसी भी इंसान के प्यार की आवश्यकता न रहे। स्वयं एक स्लोगन नोट कर लें, जिसको स्वयं ज्ञान सूर्य ने प्रकाशित किया है सम्मान से, उसको दुनिया के सम्मान की क्या आवश्यकता है, वो दुनिया के दीपकों से सम्मानित होने की क्या आवश्यकता है, जिनको स्वयं ज्ञान सूर्य भगवान ने सम्मान से प्रकाशित किया है, उसको संसार के छोटे छोटे दीपकों से सम्मानित होने के, प्रकाशित होने की क्या आवश्यकता है। इस सम्मान को इतना पक्का करें कि आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, किसी के भी प्यार के। और प्यार किसी से अपेक्षा ही न रखें कि सारी दुख के, सारी अशांति का कारण ही अपेक्षाएं और इच्छाएं, कोई अपेक्षा ना रखे, कोई मुझे प्यार दे दे, कोई सम्मान दे, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, कोई ना। तो पहली बात, बाबा के प्यार से अपने आप को भर लें। दूसरी बात कि जैसे आप, बाबा ने तैयार किया आपको, नीचे धरती पर भेजा, तो चारपाई से मत उतरिए। आपको लगे कि मैं वतन से उतर रहा हूं, मेरा अवतरण हो रहा है, और जब चारपाई से नीचे उतर जाएं तो धरती को कहें, धरती मां मेरा अवतार हो गया है, अब तुम्हारे कष्ट के दिन नष्ट हुए। धरती मां को बोले और ऐसे मुद्रा बना ले, लोगों को दिखाए नहीं, सबके आगे मत खड़ी हो जाना, लेकिन ऐसे मुद्रा अभी बना ले, सब बनाए ऐसे बैठे, ऐसे और संकल्प करें, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं महान हूं, मैं मेहमान हूं, मैं खुदा दोस्त हूं, हम अल्लाह लोग हैं, मैं पवित्रता का अवतार हूं। इसे करें 5 बार कम से कम संकल्प करें, ज्यादा याद ना आए तो एक ही नोट कर ले, मैं शिव शक्ति हूं, और उसके साथ एक लाइन और जोड़ दें, मैं क्या नहीं कर सकती। नहीं तो मुख में रहता है मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, अरे चूहा कहां से आ गया, घबराहट होती है, तो मुख में तो रहता है, लेकिन जब उसके साथ मैं क्या नहीं कर सकती हूं तो पावर आ जाएगी। ठीक है, इनको सबको मैंने प्रयोग किया है इसलिए अनुभव हो गए। तो दूसरा संकल्प है कि एक बार में 5 बार ये सुमान को दोहरा ले, और दिन भर में 5 बार, कम से कम 25 बार, और हो सके तो 50 बार, जितनी बार हो सके एक सुमान ले ले, मैं शिव शक्ति हूं, अलग टाइम बना ले। जितनी बार आप सुमान लेंगे तो सुमान का इतना बड़ा जादू है कि वो आपको शक्तिशाली बना देगा। ठीक है, दूसरा ये दूसरी बात बताई, सातों बात हमारे पहले नोट कर लें, तो समान के साथ ये करें। तीसरी बात कि अमृत वेला जब बैठें आप, तो रोजाना आज से संकल्प करें क्लास वाले कि कम से कम 4 से 4:45 बजे तक हमारा योग मिस ना हो, पक्का हो। ठीक है, ये पक्का कर लें। और योग में जब बैठें तो उसका उपाय और बता दूं, बहुत ढेर सारी बातें हैं। नींद आती है, नींद सबको प्रायः आती है, लेकिन सवेरे ज्यादा आती है, क्योंकि सवेरे आप यज्ञ रचते हैं, और उसी समय पर माया चांस लेती, जानती है कि अमरनाथ से अमर भाव का वरदान ले रहे हैं, अगर ये अमर हो गए तो दिन भर मेरी दाल गलेगी नहीं, तो सवेरे सबसे पहले माया अटैक ऐसे करती है आलस के रूप में। आप ऐसे बैठे सामने देखें, ऐसे सामने देखें और बाबा को देखें, बस निर्निमेश दृष्टि से खुली आंखों से सामने देखते रहें बाबा को, आंखें बंद ना होने दें। ये क्रम आपका भले हट से सही, लेकिन शुरू में अगर 5 मिनट भी कर लिया, भले आंखों में प्रेम के आंसू आ जाए, थोड़ा मुस्कुराते भी रहें, नहीं कोई देखेगा तो डर जाएगा। सामने देखें, थोड़ा मुस्कुराहट, कहने को डुप्लीकेट, लेकिन डुप्लीकेट मुस्कुराहट नहीं है, ये तो ओरिजिनल हमारा नेचर है। तो बाबा को देख के मुस्कुराएं, बाबा के प्यार से अपने आप को भर लें, और खुली दृष्टि से देखें। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए, गगन झुक गया वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई, रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। इसका प्रयोग करें, और हो सके तो दरवाजा बंद करके, अकेले हैं तो खूब डांस करें, अगर लाल लाइट की फोबिया हो गई है तो सफेद लाइट में बैठें, लेकिन संकल्प करें जब तक मैं आलस्य के ऊपर विजयी नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। आज मेरी अपनी स्थिति है कि जैसे लाल लाइट होती है मैं कितना भी थका मादा हूं, सफेद लाइट में भले आलस्य आ जाए, लेकिन लाल लाइट होती है और बाबा के आगे बैठता हूं तो मेरी आंखें खुल जाती है, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस हो गई। आप देखते होंगे सवेरे पलक भी न झपकने पाए, बैठते होंगे तो एकदम बाबा के प्यार में मगन हो जाता हूं, क्या अमृत बेले का जो ग्राफ है हमारा सबसे ऊपर होता है, इसलिए मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। आप भी अमृत बेले को, जिसने अपने अमृत बेले को शक्तिशाली बना लिया उसको माया हिला नहीं सकती, जिसने अपने अमृत बेले को शक्तिशाली बना लिया और बाबा की मुरली पर अटेंशन जैसे दोहरा दिया, अटेंशन देते हैं उनको, कोई भी शक्ति आ जाए दुनिया की वो कभी हरा नहीं सकती, वो अमृत बेला पूरे संगम युग में वो अमर बन जाए। तो तीसरी बात, अमृत बेला से पक्का करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। चौथी बात, बाबा की मुरली को रेगुलर पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, बार बार पढ़ना है, और याद करने के लिए कम से कम जो मोटी मोटी पॉइंट्स है उसको एक बार देखें फिर रख दें, एक बार देखें फिर याद करें फिर रख दें, याद करने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको सुनाया, आज दिन भर में 25 बार मैंने पढ़ा, 25 बार मोटी मोटी हेडिंग पढ़ी, याद करने की कोशिश की, नीचे से ऊपर आ रहा हूं तो भी याद किया, तो भी भूल जाता है, क्योंकि बीच में अभी गीत बनाया, अभी ये गाया, अभी ये प्रैक्टिस किया, ये हुआ, दिन भर भूल जाता है, फिर याद करता हूं। तो आपके लगन हो कि आपके पास नोट्स हो या मुरली हो, खाना खाने बैठे तो भी देख लो, फिर पढ़ो, फिर याद करो। लेकिन आपकी ये कुंठा कहीं कुंठित ना हो जाए, उत्कंठा बराबर बनी रहे, जब आप मुरली को पढ़ें और याद करने की कोशिश करें तो एक संकल्प लें कि मुझे किसी न किसी को सुनाना जरूर है। तो जब तक आप सुनाएंगे नहीं तो आप याद करने के बाद भी भूल जाएंगे, क्योंकि उसका यूज ही नहीं हो रहा है। जब औरों को सुनाएंगे तो मुरली जरूर याद आएगी। तो मुरली को पक्का करें और अमृत बेला पक्का करें, बहुत अच्छा एक ब्राह्मण जीवन का आधार बना लें। पांचवी बात है कर्मयोग का। कर्मयोग करते चलें। कर्मयोग में क्या करेंगे, मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देता हूं, समय पूरा हो गया, बताना बहुत कुछ था। एक टिप्स यह है, जब भोजन खाने बैठे आप, ये हम सबको भोजन करना ही होता है और सभी भूल जाते हैं। पहले तो बहुत लंबा दृष्टि देते थे, अब तो दृष्टि उससे देने का कोई सिस्टम नहीं है, बहुत लोग भूख लगी बस तुरंत खा लेते। भोग लगाना बहुत जरूरी, और गालो हमारे साथ, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा। बस इसको दो बार दोहरा ले, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, और तब तक खिलाओ बाबा खिला रहा है या आप खिला रहे हैं बाबा को, जब तक कोई दूसरा भले कोई खा के चला जाए। ऐसे बैठो, मजा लेना चाहिए ब्राह्मण जीवन का। कौन कहता है भगवान आते नहीं खाते नहीं, अरे सवेरी जैसे खिलाते नहीं, भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं। तो लगन से कहो, आज बाबा मैं भोग लगाने बैठी हूँ, सामने कुछ अनुभव होना चाहिए, आप जब तक सामने आएंगे नहीं खाएंगे नहीं मैं शुरू नहीं करूंगी। संकल्प करो, खाना तो है, बाबा भी आ जाएगा और खा के भी जाएगा और आपको खिलाएगा भी, ठीक है। एक कर्मयोग दूसरा है, दिन भर में अपने हाथ अपने सिर पर यहां रख ले और बीच बीच में अनुभव करें, जैसे बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर आए, खुदा दोस्त के हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चले। इस तरह से मस्तक पर रख के अनुभव करें कि बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, इस छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूं। नीचे करें, ये अभ्यास ये बीच बीच में करें, लोगों के आगे मत कीजिएगा, ये जो भी मैं बता रहा हूं ये अपने मन के लिए, और जब बॉडी लैंग्वेज हमारी बोलती है तो ज्यादा याद रहता है। तो जब भी एकांत हो, जब भी ऐसे मौका मिले, छोटे छोटे प्रयोग कीजिएगा, आपको लंबे समय तक याद करें। एक अभ्यास और कर लें, ऐसे हाथ करें, अनुभव करें कि शिव बाबा मेरे ऊपर है, सिर पर है, और यहां बैठ के शिव बाबा की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और मैं आत्मा चमक रही हूं, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा। ये अनुभव कि मेरे सिर पर मेरे शिव बाबा हैं, उनकी लाइट आ रही है, किरणें देखें, पावर देखें, करंट आ रही है, है, कनेक्शन है तो करंट आ रही है और मैं आत्मा चार्ज हो रही हूं, बाबा किरणें और मैं आत्मा। इस अभ्यास को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ड्राइविंग कर कुछ भी करते हुए एक ही पक्का करें और सब छोड़ दें। खाना खाते हुए भी अगर ये भी गाना वाना नाए छोड़ दें, केवल यही संकल्प मेरे सिर पर मेरे बाबा है। ये आपको अंतमते सा बता दे, एक ही अंतमते सा गते बना देगी। हम कई अभ्यास में रहते हैं, इनको याद करो उनको याद करो, बस कुछ याद करना करें। शिव बाबा लाइट और मैं आत्मा, शिव बाबा किरणें और मैं आत्मा। हो सकता है, हो सकता है, सबसे हो सकता है, बस हाँ एक अभ्यास ये बहुत अच्छा कर ले। और एक अभ्यास और करता हूं, पांचों स्वरूपों का अभ्यास। ऐसे बैठ जाए, सब कोई बैठ जाए, ऐसे अभ्यास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ दोहराइएगा। और बाद में भाई ये मिल सकता है क्या ये? अच्छा ये यूट्यूब पर भी आ जाता है ना? हाँ ये क्लास भी आप सुनेंगे तो मिल सकेगा। हाँ जी, तो ऑडियो मिलता है, वाह लाइव भी जा रहा है, ऑडियो भी मिलता है। आपके लिए बाबा ने सब प्रबंध कर दिया है, आपको सब याद रहेगा, ठीक है, प्रबंध कर सकते हैं। आप ऐसे करें, जो अभ्यास कर लें, बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत काम में आएगा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। बहुत अच्छा, बधाइयां, इसको कीजिए। और छठी बात है, एकांत में बैठ के अपनी दिनचर्या को नोट करना, मैंने क्या संकल्प लिया था, पूरा किया कि नहीं, चार्ट नोट करें और पांच पांच पॉइंट्स नोट कर लें। एक पॉइंट लिख रही है कि पांच पॉइंट मेरी सूक्ष्म पुरुषार्थ के लिए क्या करना था और पांच मोटे मोटे काम दिन भर के लिए क्या करने थे, उनको टिक लगाते जाएं कि आज दिन भर में क्या किया, कैसे रही दिनचर्या, लक्ष्य जो बनाया था उस लक्ष्य के अनुसार दिनचर्या रही कि नहीं, उसको पक्का कर लें। और अंत में सातवें पॉइंट कि रात को जब सोने जाएं तो सबका दिल से धन्यवाद करें, इसका धन्यवाद करें, थैंक यू मेरे शरीर, मेरे दोस्त, बड़े काम के हो, बहुत अच्छे हो, साथ देना, अंत में भी बैठे रहना और मैं उड़ जाऊं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका धन्यवाद कर दें और प्रकृति का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद और प्यारे बाबा को सबसे ज्यादा थैंक यू अभिनंदन।
प्रेम से बस
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सतीश भाई जी का। आपने हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन के अनुभवों से हमें भी और आगे बढ़ाने के लिए इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सुंदर सुंदर अपने एक्टिविटीज के द्वारा भी एक्सरसाइज के द्वारा भी 5 स्वरूप के तो आपने हमें बहुत सिखाया। तो कौन कौन प्रॉमिस करेंगे कि अमृत वेला मुरली क्लास मिस नहीं करेंगे आज के इस क्लास से आज के बाद? यस, फोटो खींच। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत अच्छा। और भाई जी एक गीत का भी जिक्र कर रहे थे, अभी अभी कहानी शुरू हुई, जो आदरणीय जगदीश भाई साहब के स्मृति दिवस पर जो पिछले साल रिलीज हुई थी। एक और सॉन्ग था, उसमें 2 सॉन्ग्स रिलीज हुए थे, प्यारे जगदीश भाई और अभी अभी कहानी शुरू हुई। तो आदरणीय साधना दीदी के इनिशिएटिव द्वारा ये दोनों गीतों के रचनाकार आदरणीय सतीश भाई जी हैं। बहुत सुंदर गीत इन्होंने लिखे हैं और भ्राता हरीश मोहल जी उन्होंने गीत गाए हैं। तो अभी भी अगर हम वो गीत सुनते हैं तो हमें अनुभव होता है कि भाई साहब की सूक्ष्म रूप में अभी भी हमें वो पालना मिल रही है। तो बहुत सुंदर भाई जी ने गीत लिखे हैं। और अभी हमारे बीच शांता बहन है, वो भी एक, हाँ जी फिर से ताली बजाकर भाई जी का धन्यवाद करें।
ओम शांति। संगीत का गुरु का शब्द गाने के लिए मुझे दिल धड़क रही थी। गुरु जी तो बाहर चले गए तो मैं गाना गा लेती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ये जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर, अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती खनी हूँ। पिया तुम हो सागर, मुझे मेरे मीते, मेरा चैन दे दो, मुझे मेरे सपनों की एक दिन दे दो ना। यही बात पहले भी, यही बात पहले भी तुमसे कही थी, वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो सागर, तुम्हें छू के पल में बनी धूल चंदन, तुम्हें छू के पल में बनी धूल चंदन, तुम्हारी महक से महकने लगी तन, महकने लगी तन। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, गले से लगाओ। पिया और तुमसे क्या चाहती हूँ, पिया तुम्हें, तुम हो तो सागर, मुरलिया समझ कर मुझे तुम उठा लो। बस एक बार दिलों पे अपने लगा लो ना, कोई सुर तो जागे मेरे, कई सुर तो जागे मेरी धड़कनों की अपनी सरगम से रूठी हुई हूँ, पिया तुम हो सागर, तुम्हें देखती हूँ लगता है जैसे जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ, पिया तुम हो सागर।